Namaskar and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे लेकिन सच कितना सहज है। अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान। लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं न कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है। तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी। इतनी सारी बातें कर ली, इतना सब कुछ जान लिया हमने। खास जो हमने बात जानी थी, अगर पिछली कुछ कड़ियों को देखें तो जिस समय में हम रह रहे हैं, हम में से हर कोई ये महसूस कर रहा है कि समय बहुत बलवान है, ये भी कहते आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत खराब चल रहा है, ये भी सुनते आ रहे हैं। और जिस तरह से क्लैरिटी आई है हमारे सामने, यस यस, कितने युगों की बात की है और अब आई थिंक अल्टीमेट हो चुका है, बिकॉज ब्लैकनेस इज देयर ऑल अराउंड अस। आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहां से होते हुए आए हैं।
हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर, यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन, और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी, यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर। एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है। और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुके हैं, you know, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है।
नाथ जेम्स की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है।
सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ, नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो। पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में। एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2008, 2010, 2011। तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज विद इन आवर लाइफ टाइम। पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा। तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है, बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा। अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता। हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड हमें, क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद
दिन
सुबह होनी है।
इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली।
एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर। बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन व्हाट अबाउट दैट ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम। जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल, मैटर एंड गॉड इज एनर्जी। तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, तो इसलिए जितनी नंबर ऑफ सोल्स हैं वो फिक्स्ड है, उसमें ना कोई एडिशन है ना कोई सब्ट्रैक्शन है। एंड द अदर इज एनर्जी मूव्स फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट, वो पहले एक ऑर्डर्ड स्टेट में है, जब वो मूवमेंट या एक्शन में आती है तो धीरे 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 वो ऑर्डर्ड स्टेट से क्योटिक स्टेज में आ जाती है। एंड देन अनदर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन्स। जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है एंड दैट रिचार्जेस और रिकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कियोटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज। तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे 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 कर्म में आते 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 इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज, फिनिश नहीं होती। लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा, निराकार, शिव बाबा कहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इनटू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन कि द सोल विल बी इट्स हाईएस्ट स्टेज, मूव कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज। तो हमें समझ में आता कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल। तो जैसे दिन का साइकिल सुबह दोपहर शाम रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज। तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे। कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है आजकल हम कहते हैं, घोर कलयुग है। जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है। लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
देयर इज दैट होप, यू नो,
इट्स नॉट अ होप, इट्स अ रियलिटी। सो इट्स जस्ट दैट वी प्रिपेयर फॉर दैट रियलिटी। अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो तो हमारी रात कैसे बीतेगी? इट विल फील कि ओ माय लाइफ विल बी लाइक दिस, यू नो। बट हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना, वो नो ग्लोबल लेवल सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है?
वंडरफुल। एक्चुअली यू नो, माइंडसेट चेंज करने की बात है सबसे पहले, ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्फ सुबह आने वाली है। इट मेक्स ऑल द डिफरेंस।
इट कांट गो ऑन एंड एनीवेज इफ यू लुक एट इट एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, environment, it just can't go on and on and on forever. कब तक? कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा। तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे तो सोल वॉज एब्सोल्यूटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर, तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाइएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल। जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूँ, वो उस समय में 100% नेचुरल थी। जैसे आज मैं शरीर हूँ, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूँ। उस टाइम मैं आत्मा हूँ, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था, इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट स्लोली, बट इट वाज अ स्लो प्रोसेस, इट वाज अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल, एंड वी हैव एंजॉयड दैट जर्नी, वी हैव। जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों, यू नो, इतना दुख है, इतनी अशांति है, लेकिन कितना समय?
अशांति तो अब आई है,
अब आई है। ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम थक जाते हैं, हम कोई गेम भी खेलते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम वी गेट टायर्ड, बट वी एक्सेप्ट दैट, हम समझ लेते हैं कि 4 घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे, और फिर जब थक जाते हैं फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल बी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
नो, वी विल नॉट।
3 hours 45 minutes वॉज गुड गेम, 15 minutes पेन, कांट गिव अप द गेम,
बट इट्स पेन एक्चुअली दो 15 minutes, दैट्स द पेन वी फीलिंग नाउ,
दैट्स द पेन, एंड व्हाई आर वी फीलिंग दैट पेन? बिकॉज नाउ वी आर टायर्ड, यू नो, the soul has really reached its stage where hame ye yaad hi nahi ki main atma hu, to wo energy level bilkul jaise finish nahi, lekin it's reached its lowest point, lekin now we have the opportunity because the highest source of energy Paramatma has intervened into the system, so all that I have to do is now
connect
to him. and I will again move from the chaotic stage to the ordered stage.
Before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like, I want to ask you a question. ये जो हम पूरे तारीखों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know.
Cycle.
तो इसका मतलब कई बार हम
जैसे सुबह दोपहर शाम रात कई बार हो चुकी है.
कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
कई बार हो चुके हैं. आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है. साइकिल है. तो अगेन, अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे ये कब शुरू हुआ था. और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा. लेकिन साइकिल,
तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं.
एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी. क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है, देन
आपको पता है कि आगे भी क्या.
इट्स वेरी इजी. सी, जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई, जैसे यू नो टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम. एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है. वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट. इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है. एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल. पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है. क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे. आप थे 100% प्योर. आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप. और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे
और
जाएंगे.
आप ही जाओगे,
आप
और
ही जाओगे. और आपने ये जंप पहले भी किया है, क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है. तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है. जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर. यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो, somebody has to motivate दिल से, you've done it before, so now you can do it again. But if somebody asks me to do something which I've never done before, it will be little challenging. But if I've done it so many times before, then it's simple. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है. क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है. बट आई वॉज क्लीन.
तभी सिस्टर शिवानी, कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ. मैंने ये देखा हुआ है पहली बार. इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ.
ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है. कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था. बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन. तो ये व्हाट इज दिस. अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है. लेकिन अब हमें समझ में आता है, बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव ऑन एट ऑन एट ऑन. तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
हो चुका है.
जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है. और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है, जब वो फिर से होती है और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को लें तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है. कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है. यू नो इंट्यूशन. इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है. बिकॉज इट्स अ साइकिल. इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल, जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माई फ्यूचर, इट्स माई टुमोरो. बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल, देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माई
पास्ट. ओके,
सी, लुक एट इट ऑन अ साइकिल. हियर आई एम टूडे, दिस इज माई टुमोरो. बट देन इफ आई लुक एट इट फ्रॉम हियर, दिस इज माई यस्टरडे. So that's why, because it's my yesterday तो याद है,
it's somewhere there in my mind.
यहाँ है. तो जितना माइंड को साइलेंट करते जाएंगे तो वो yesterday याद आता जाएगा, और जितना yesterday याद आएगा टुमारो पता लगता जाएगा.
नाउ द टाइम इज कि वी हैव टू बिकम प्रोएक्टिव.
एब्सोल्युटली, बिकॉज अब हमें बहुत कुछ करना है. नाउ इज नॉट द टाइम कि वी कैन जस्ट सिट बैक एंड से कि जो होना है वो, क्योंकि बाहर का परिवर्तन जितनी तीव्र गति से होगा उससे ज्यादा तीव्र गति से हमें अपना आंतरिक परिवर्तन चाहिए. क्योंकि केओस बाहर बढ़ेगा, यू नो, ऑर्डर्ड टू केओटिक स्टेज. तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर से केओटिक स्टेज में जा रहे हैं और अभी भी और केओटिक स्टेज में जाने वाले हैं. जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर व्हाटएवर एवरीथिंग, तो वो जो केओटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ. द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज केओटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
चेंज हो जाएगी,
फिर से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी. लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर.
क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या केओटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो,
वो पर्यावरण हाँ एकदम अच्छा था. तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है. आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर. आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई. अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी. तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल. क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता. बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई. लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
टाइम नहीं, उसमें थोड़ा सा एफर्ट
भी करना पड़ता है. और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है.
हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन अ मॉरल, सोशल, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल, दैट डिक्लाइन इज
वेरी वेरी फास्ट.
यू नो, मोबाइल भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं. तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा. तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा. और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था. लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है. एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है. एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है. और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं. अब हम कलयुग में वैसे तो हैं, जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं. तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज. संगम किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम.
स्ट्रेंथन्ड
एक्चुअली, यस. एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज. क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल. क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय. सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल. लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल. तो दिस एज इज द डायमंड एज. तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज. लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहां आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है.
मोस्ट एक्साइटिंग,
मोस्ट एक्साइटिंग वेयर यू कैन सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्डन एज एंड नाउ. गोल्डन एज में सब कुछ ही अच्छा है, यू नो. तो आपको अच्छाई का भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो. सत्युग में आप हमें फील भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बिकॉज होगा ही अच्छा,
नेचुरल,
इट विल बी नेचुरल. सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है. लेकिन अभी का जो समय है जहाँ अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहाँ चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं, तब वो जीवन कैसे होगी?
That, in fact, yes.
And that's why it's the most valuable period. That's why, you know, we're not waiting for Satyug to come. No, we're not, because this period is more beautiful than that. Because my life becomes so beautiful right now. तो ये वो संगम युग है, कलयुग से सतयुग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. So this is the period of transformation. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. एंड इट इज जस्ट टू मूव एंड द साइकिल हैज टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. तो दिस इज दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जहां फ्रॉम 100% नॉट 100% बट वेरी इम्प्योर वी विल जंप टू अ स्टेज ऑफ 100% प्योर. और उसको करने का तरीका कैसे होगा?
व्हाट आई कैन फील इज द मेडिटेशन, द वे आई लिंक, बिकॉज दैट सी इफ यू लुक एट, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं, प्रोग्राम हमारे इस परिवार का हिस्सा है, कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. यू नो, इट हैज मे बी इट्स 10 मिनट्स, मे बी इट्स 15 मिनट्स, मे बी इट्स हाफ एन आवर, बट दैट्स द पीरियड यू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू. एंड इफ यू मिस इट, यू डोंट लाइक इट, यू वॉन्ट इट टू बी देयर.
तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार्स हैं, दे विल री इमर्ज. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? यू नो, जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर की लेयर में ले आ जाएगा, और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड, यू नो, द आउटसाइड क्लीनिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा, जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 feet द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
इस प्रलय की बात की जाती है.
तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो, पर्यावरण की सफाई होनी है, सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा.
आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहना शुरू
हो गए. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. दो काम हम अभी कर रहे हैं, एक अपने ओरिजिनल संस्कार को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परमधाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊं. सफरिंग हैज इंक्रीज्ड, तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है, और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है. तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के, जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, जिसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी. तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं. हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं, वो ही हमारी सजा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार्स इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
कम होती
जाएगी। एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई, मतलब उतने आपके अकाउंट्स सेटल होते गए। क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा, सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के, वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी
जो है वो पूरी
उससे पहले हो जाएगी। सो वी विल बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटिफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल। एंड जो आने वाला समय है वो तो आएगा ही, वी कैन नॉट
स्टॉप। शिवानी, नाउ आई एम नॉट गोना से एनी मोर, यू गिव अस होप बिकॉज यू शोड अस अ रियलिटी, दैट्स व्हाट आई विल स्टिक टू। और ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओम शांति।
ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। और जैसा कि सचिव वाली ने कहा था कि याद तो कहीं ना कहीं होगी ही, अगर हम उससे गुजरे हैं तो हो सकता है हमारी यादों में हो,